الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے پچھلی دفعہ آیت نمبر 34 مکمل کر لی تھی، دو پہلو رہ گئے تھے، وہ مختصر طور پہ عرض کر کے پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ایک بات یہ کہ جو فجر بو ہننا ہے، اس کے بارے میں یہ کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ یہاں ہلکا پھلکا تادیب کے لیے کوئی دو ایک لگانے کی بات ہو رہی ہے یا اچھی طرح پیٹنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیسے فیصلہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے آپ کو سباق ہوتا ہے. جو لفظ وزر بو ہننا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہلکا سا ایسے تھپکی دینے سے لے کر تلوار سے قتل کرنے تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سیاق و سباق فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن نشوز کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، تو ان کے آپس میں پوری محبت، اپنائیت، ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی مانتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے. اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں شوہر بحثیت قوام زیر بحث ہے، بحثیت شوہر زیر بحث نہیں ہے، دونوں دائروں کو الگ رکھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ وزر بو ہننا کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ اس معنی میں نہیں کہ بس قتل ہی کر دو، یہ معنی نہیں ہے. تو یہ ہلکا پھلکا مارنا اس سیاق و سباق سے نکل رہا ہے، جس میں نصیحت ہے، خیر خواہی ہے اور یہ سارا کچھ موجود ہے. تو یہ سیاق و سباق ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے. تو اس میں ہم ہلکے ترین معنی لیں گے، جس کو ہم ہلکی سی سزا کے لفظ سے بیان کر سکتے ہیں. اس میں مارنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لازماً مارا ہی جائے، یہ بھی ایک واضح ہے. کوئی سزا جو جسمانی نوعیت کی ہوگی وہ دی جا سکتی ہے، لیکن پوری ہمدردی، پوری اپنائیت، نہ بیوی اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہے نہ شوہر اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس پورے ماحول کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر چھوڑنے کا مسئلہ ہو جیسے آگے چل کے واضح ہوگا، تو پھر حکم ہی دوسرا ہو جائے گا، پھر مارنے کی بات نہیں کی جائے گی. مارنے کی بات محبت کے تعلق میں کی جا رہی ہے، تو یہ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے. دوسری بات جو یہاں واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزر بو ہننا ان کو مارو، یعنی فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے مارنا. نہیں، مارنا فرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اجازت کی بات ہوتی ہے، مشورے کی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب مارنا فرض ہو گیا. قرآن مجید میں ایک مقام پہ جب حج کا احرام کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستادو، جب تم احرام کھول لو تو پھر شکار کرو. الفاظ یہی ہیں، مطلب کیا ہے؟ شکار کر سکتے ہو. تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ تم ان کو سزا دے سکتے ہو، بس دے سکتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سزا دو. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں، دو باتیں تھیں واضح رہنی چاہیے. فجر بو ہننا کے معنی ہم لیں گے سیاق و سباق کی روشنی میں. قوام زیر بحث ہے، شوہر زیر بحث نہیں ہے. شوہر بحثیت ہے، قوام زیر بحث ہے. دونوں میاں بیوی آپس میں رہنا چاہتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن نشوز کا کیس زیر بحث آ گیا. اس وجہ سے فجر بو ہننا میں اصلاح کے لیے، گھر کے نظام کو بحال کرنے کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے، جیسے ہم اپنے بیٹے کو سزا دے سکتے ہیں اس کی بری عادتیں چھڑانے کے لیے، بس اس طرح کی چیز. تو آگے چلتے ہیں آج. بین خفتم شکا کا بین ہی ماں فباسو حکمن میں ناہل ہی و حکمن میں ناہلہ این یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اگر تمہیں اندیشہ ہو شکاک کا، شکاک دراصل عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، عداوت، دشمنی. ٹھیک ہے، یہ معنی میں آتا ہے. اور یہ پارٹی بازی، دونوں الگ الگ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس میں پھر جدائی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. تو اگر تمہیں نظر آئے کہ ان دونوں کے درمیان تو دشمنی سی بن گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ شکاک پہ آ گئے ہیں، دو پارٹیاں بن کے بیٹھ گئے ہیں، اب यही बात जो मैं कह रहा हूँ, ये पीछे आयत में ये मौजूद नहीं है, पिछली आयत में शिकाक नहीं हुआ, तो दोनों के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक कायम है, सिर्फ नशूज हुआ है। जबकि यहाँ सूरत हाल ये है कि अब शिकाक आ गया, यानी दोनों अलग अलग पार्टीज बन गई हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे, मुखालफत शदीद हो गई है। इस सूरत में फरमाया कि क्या करना है, तो ऐसी ऐसी मुखालफत जो जुदाई की तरफ लीडिंग टू सेपरेशन बन रही हो, उस तरह की चीज़ ज़ेर बहस आ गई है। पहले ऐसा नहीं था, यानी शिकाक जो पहली आयत 34 नंबर आयत में सिर्फ नशूज हुआ है, शिकाक नहीं अभी आया। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मसला फ़र्ज़ कर लो कि तुमने ये काम भी कर लिया, नसीहत का काम भी कर लिया, वाजर हन्ना फिल मजाजे, उनको बिस्तर अलग करने का भी मामला कर लिया, कुछ सख्ती भी कर ली, सज़ा भी दे ली, लेकिन फिर भी मामला ठीक नहीं हुआ, ये कह के ठीक हो गया तो बस ये रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और अब यह है कि नहीं, बात आगे बढ़ गई है, अब इसमें शिकाक के अंदर जो पहलू हैं पिछली आयत के साथ वो जोड़ लीजिए ताकि वाजे हो जाए। ऐन मुमकिन है कि ये जो सारा अमल हुआ है, इस सारे अमल में शौहर गलती पर रहो, ठीक है, कि कसूर शौहर का था, लेकिन चूंकि वो कवाम था तो उसने अपना हक गलत इस्तेमाल किया, और अब बीवी जो है वो बिल्कुल अलग होकर बैठ गई है, उसने मुखालफत का रूप इख्तियार कर लिया। दूसरा इम्कान यह है कि शौहर ठीक था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में या बीवी ने फैसला कर लिया कि नहीं, ये शौहर इस काबिल नहीं है, या जो भी है, तो दोनों सूरतों में शिकाक कम जगह पे पहुंच गए हैं। और कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि बस शिकाक वैसे ही हो गया, यानी ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना नशूज़ का मसला हुआ, लेकिन औरत ने या शौहर ने मुखालफत का रूप इख्तियार कर लिया। तो तीनों सूरतों में, यानी शौहर गलती पर था, शौहर गलती पर नहीं था, वाक़ता बीवी नशूज़ का अमल कर रही थी, या कुछ भी नहीं हुआ, नशूज़ वगैरह हुआ नहीं, सीधा शिकाक पे आ गए, तो तीनों केसेस में फरमाया है कि तुम क्या करोगे, फबसु हकमन में नाहले ही व हकमन में नाहले, एक सालिस जो फैसला करने वाले लोग होते हैं, समझदार, समझदार और आदिल, उसको हकम कहते हैं। यानी कुछ सोसाइटी में हर जगह लोग ऐसे होते हैं, घरानों में, बरादरियों में, कि जो मामलात की समझ रखते हैं, जो सही अदल के साथ फैसला कर लेते हैं, जो मामलात की गहराई तक पहुंच सकते हैं, उनको हकम कहते हैं। एक हकम मर्द की तरफ से और एक हकम औरत की तरफ से मुकर्रर कर लिया जाए। अब फबसु में जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, ऐसे लगता है कि सबको मुखातब कर दिया है। यहाँ पर बहस हो गई हमारे मुफसरीन में, एक ग्रोह कह रहा है कि हुकूमत मुखातब है, ठीक है, एक ग्रोह कह रहा है कि मुआशरा मुखातब है, यानी मेरे ख्याल में ये जो इस तरह के होते हैं मुखातब, ये खुले होते हैं, किसी भाई ने देख लिया है, किसी भाई को चचा को मालूम हो गया, ताया को मालूम हो गया, जिसको मालूम हो गया वो ये रास्ता इख्तियार करें, हो सकता है मोहल्ले वालों को पता चल गया हो, किसी हमसाए को पता चल गया हो, तो जो भी है वो हकम ये सुलह कराने के लिए ये रास्ता इख्तियार करेगा कि मियां बीवी के दरमियान शिकाक की कैफियत पैदा हो गई, मुखालफत की सूरत हाल पैदा हो गई है, ऐसी मुखालफत के नज़र आ रहा है कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर अब एक हकम उधर से, एक हकम उधर से, ये दोनों हकम इसलिए दिए गए हैं कि मर्द औरत बराबर हैं, दोनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ज्यूरी जो बैठेगी, अदालत जो लगेगी, उसमें दोनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जाहिर है कि जो आदमी बीवी की तरफ से आया है वो बीवी की दर्दमंदी ज़्यादा रखता होगा, और जो शौहर की तरफ से आया है वो शौहर का ज़्यादा ख्याल रखेगा, तो दोनों मिलकर करेंगी अदल ही, लेकिन दोनों की नुमाइंदगी इस तरह से हो जाए कि एक उधर से हो, एक उधर से हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ शौहर की तरफ से ले लिया जाए या सिर्फ बीवी की तरफ से, या बिल्कुल ही जो दोनों ही शौहर की तरफ से ले लिए जाएँ, या दोनों ही बीवी की तरफ से ले लिए जाएँ, या बीवी की तरफ से लिया ही किसी को ना जाए, बस शौहर की तरफ से एक अजनबी डाल दिया, एक शौहर की तरफ से डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुफसरीन ने एक बहस उठा दी है कि भाई अगर ना मिलें तो फिर क्या करना है, ना मिलने की बात अलग है, लेकिन असल मसला यह है कि दोनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, बीवी की भी और शौहर की भी, इसके बगैर हकम नहीं बैठने चाहिए। तो मुआशरे का कोई भी फर्द, कोई हमसाया है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो ये मशवरा दे कि भाई हम एक आदमी उधर से बुला लेते हैं, एक आदमी उधर से, और आदमी वो जो सियाना समझदार हो और अदल इंसाफ वाला हो, राय वाला हो, तो ये अब काम किया जाएगा। करना क्या है? सुलह करानी है, यानी दोनों के दरमियान मुखालफत पैदा हो गई है तो दोनों के दरमियान अब सुलह करानी है। एक आदमी उधर से आएगा, एक आदमी उधर से आएगा। इन युरीदा इस्लाहन, तो अगर दोनों इस्लाह चाहते हैं तो फरमाया कि अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान मुआफ़कत पैदा कर देंगे। अब यहाँ पर भी मुफसरीन में इख्तलाफ हो गया कि ये युरीदा इस्लाहन का क्या मतलब है। एक ग्रुप कहता है कि युरीदा इस्लाहन का मतलब है कि जो सुलह कराने आए हैं, ये हकम और ये हकम, इन दोनों के दरमियान, दोनों की अगर इरादा हो कि सुलह कराएंगे तो फिर अल्लाह ताला दोनों को तौफीक दे देगा अच्छी बात करने की। और दूसरे ग्रुप का ख्याल यह है कि ये मियाँ बीवी के बारे में है कि जब सुलह कराने वाले आएँ तो उस मौके पर अगर दोनों मियाँ बीवी खलूस दिल के साथ इस्लाह करने को तैयार हो जाएँ तो अल्लाह ताला कोई ना कोई मुआफ़कत का रास्ता निकाल देगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये दूसरे मानी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस्लाह तो इन्होंने ही करनी है दोनों ने। तो फरमाया कि अगर दोनों इस्लाह करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मुआफ़कत पैदा कर देगा। ये एक वादे की तरह की चीज़ है, ये सादा कोई मशवरा नहीं है कि जैसे ही तुम इस्लाह करने बैठोगे मियाँ बीवी, नीयत तुम्हारी ये होगी, दिल से फैसला करके बैठोगे कि मैं इस्लाह करने बैठा हूँ, तो मुआफ़कत का रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। लेकिन अगर दोनों फ्री कैन में से कोई एक सिर्फ वहाँ बैठा हुआ है कि चलो अब मुसीबत पड़ी है, अदालत के सामने बैठ जाते हैं, तो फिर तौफीक हासिल नहीं होगी। तो पिछली आयत के बाद से भी हम जोड़ सकते हैं इसको और अलग से भी ले सकते हैं। पिछली आयत में जो बात चल रही थी कि अगर नशूज़ हो जाए तो नशूज़ के बाद ये तीन स्टेजेस में से गुजरा जाएगा दोनों मियाँ बीवी, और इसमें लंबा अरसा है, ये नहीं कि एक घंटे का आवाज़ किया, अगले घंटे बिस्तर में छोड़ा और तीसरे घंटे के बाद मारना शुरू कर, ये मतलब नहीं है। मतलब कि इसमें हो सकता है 2 साल गुजर जाए मामले की इस्लाह करते करते, और अगर इस तरीके से मामला ठीक ना हो तो फिर क्या करना है? सूरत हाल अगर शिकाक तक पहुंच जाए, ऐसी मुखालफत जो दोनों फरीकों को अलग अलग कर रही है, तो फिर फैसले के लिए दो हकम बैठाए जाएंगे, दो हकम, एक उधर से एक उधर से, ताकि दोनों की हमदर्दी रखने वाले उसमें मौजूद हों। और दूसरी तरफ दूसरा ये हो सकता है कि हम इसमें एक तीसरा पहलू ये मान लें कि वैसे ही शिकाक पैदा हो गया किसी भी दो मियाँ बीवी के अंदर, तो उसमें हम फिर यही रास्ता इख्तियार करेंगे। अब आप देख सकते हैं दो नुक्ते और मैं बयान करके फिर आगे बढ़ता हूँ। पहली बात मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि ये 34 नंबर आयत में अल्लाह ताला चाहते हैं कि मामला मियाँ बीवी के दरमियान रहे, तो अगली आयत इस बात का सबूत बन रही है कि अब भी अल्लाह ताला रिश्तेदारों में जा रहे हैं, बेगाने लोगों के पास नहीं जा रहे, कि अगर हकम बनाने हैं तो वो भी कोई चाचा मामू ताया कोई लाया जाएगा, ये नहीं कि हम बेगाने अदालत में चले जाएं, थाने में चले जाएं, आजकल हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं उनके पास चले जाएं, ये नहीं अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि घर के अंदर रहा जाए मामले को, पहले मियाँ बीवी के दरमियान रहे जो मियाँ बीवी हैं, लेकिन कवामियत के पहलू से नशूज़ ज़ेर बहस आ गया था, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि कवाम जो है वो अपनी नशूज़ अपनी बीवी के नशूज़ पर अपनी कवामियत को किस तरह से करेगा। लेकिन दोनों मियाँ बीवी रहना चाहते हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन नशूज़ ज़ेर बहस आ गया है। अब इनको कुछ इख्तियार दिए गए हैं उसको कवाम को, तो इसलिए ये दोनों मियाँ बीवी करेंगे। इसलिए मुझे कहना पड़ा है, दोहराना पड़ा इस बात को कि बाज़ लोगों ने यह ख्याल किया है कि इस पूरे हुक्म को अदालत में ले जाया जाए। मतलब क्या उनका मतलब यह है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से नशूज़ महसूस करे तो फिर क्या किया जाएगा? फिर लोग आएंगे, लोग आके शौहर को कहेंगे कि तुम अभी 2-4 महीने नसीहत करो, फिर बीवी ठीक नहीं हुई, यानी हकम कह रहे हैं, अदालत कह रही है या पुलिस कह रही है या मोहल्ले वाले कह रहे हैं शौहर को कि तुम अभी नसीहत करो, या ये लोग भी नसीहत कर रहे हैं, बीवी को समझा रहे हैं कि भाई तुम बाज आ जाओ, ये ना करो वो ना करो। उसके बाद जब बीवी ठीक नहीं हुई, नशूज उसका अभी तक कायम है, तो फिर शौहर को तजवीज़ किया जाएगा कि भाई इसका बिस्तर अलग कर दो। यानी फैसला कौन कर रहा है? बाहर लोग बैठे हुए कर रहे हैं। और फिर जब ये भी मसला स्टेज भी पूरी हो जाए, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सोसाइटी औरत को सजा देगी, मुआशरे के लोग औरत को सजा देंगे। तो वो इस तरह से यहाँ पर भी खारिज को ले आते हैं। तो ये आयत, अगली आयत 35 नंबर दलील बन रही है कि नहीं, अल्लाह ताला यहाँ भी अहल के पास ही जा रहे हैं। जब हकम बना रहे हैं, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त भी रिश्तेदारों ही को बुला रहे हैं। तो पिछली आयत में भी ये नहीं हो सकता कि हम कोई हकम तो मुकर्रर नहीं किया गया इसमें। तो ये बात आयत नंबर 35 वाजे कर रही है कि 34 नंबर आयत में दोनों मियाँ बीवी, कवाम और उसकी बीवी के दरमियान फैसला करने को खुद उन पर छोड़ दिया गया। अब ज़ाहिर है कुछ में गलतियां भी हो सकती हैं उसमें दोनों फरीकों की तरफ से। उसको ठीक करने के लिए आगे फिर हकम का मामला आ गया है कि फैसला किया जाएगा कि गलती किसकी है। गलती इसलाह करने में कई तरीके फिर हो जाते हैं। वो हकम फैसला करते हैं कि भाई शौहर की गलती है तो शौहर को कोई पाबंदियाँ लगा देंगे, कोई सजा दे देंगे। बीवी की गलती है तो उसकी पाबंदियाँ कोई दे देंगे या सजा दे देंगे उसको। उसके बाद फिर कहेंगे हाँ जी इन शराइत पर सुलह हो गई है, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर अभी ये फैसला नहीं हुआ कि गलती पर कौन है, बस शौहर को इख्तियार दिया गया था कि वो ये काम कर ले। और शौहर के बारे में मैंने बता दिया था कि ये दरअसल अमरहुम शूरा बैनहुम के तहत मामला कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अंधा बहरा कवाम है, बस जो जी में आता है करता है। तो ये एक समझदार मोमिन की बात हो रही है जो अपनी बीवी का मुखलिस शोहर है और कवाम भी है, उसको ये कहा जा रहा है कि तुमने ये करना है। हमारे जहनों में आमतौर से एक बुरे डिक्टेटर का ख्याल आता है और वो सबको लोगों को हम उसमें घसीट देते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जिस मोमिन को तैयार कर चुके हैं सूरह निसा के उतरने तक, ये उनके लिए बात हो रही है। जिसमें हजरत उमर जैसा आदमी है और जिससे औरतें तो क्या मर्द भी डरते हैं, खालिद बिन वलीद जैसा आदमी सरहद पे बैठा हुआ है, हजरत उमर का हुक्म आ जाता है कि तुम सिपा सलारी के मनसब से माजूल किए जा रहे हो, तो वो अपने दोस्तों में बैठ के कह रहे हैं उमर पता नहीं क्या करते मेरे साथ, क्या दुश्मनी है क्या वहाँ, जो भी दुख के मौके की बातें होती हैं। तो एक सिपाही ने कहा कि खालिद तुम फितना पैदा कर रहे हो। तो खालिद बिन वलीद जैसा आदमी खुद एक साहिब जगरूत आदमी है, रोबदार आदमी है, तो वो कहते हैं कि उम्र के होते फितना कैसे पैदा हो सकता है। ये वाले उम्र जब एक बुढ़िया उनको कहती है कि जब अल्लाह ने नान नफका बंद नहीं किया तुम कौन होते हो, तो बोलते ही नहीं आगे से। इस उम्र को कवाम बनाया गया है रजी अल्लाह ताला। तो हमें पहले अपने मर्दों को तरबियत करना है, दीन सिखाना है, फिर उनके हाथ में ये जो भी इख्तियारात हैं वो देने चाहिए। वरना जाहिल जाहिल आदमी के हाथ में तो गिलास भी नहीं पकड़ाना चाहिए, पता नहीं तोड़ डालेगा। तो एक बीबी को, एक औरत को, एक बच्ची को उसके हवाले करना तो ये सोच समझ के करना चाहिए। ये अलग से एक तालीम है, उसका इस आय से कोई ताल्लुक नहीं है कि मर्द कैसे होते हैं, जड होते हैं कैसे होते हैं, तो उसको अलग से देखना चाहिए। वो इस आयत के अंदर नहीं घुसेड़ देना चाहिए कि मेरा हमारे गांव का जो आदमी है उसने तो औरत के साथ ऐसा किया है और वो कहता है जी कि मुझे मारने का अल्लाह ने हक दिया है। किसने? अल्लाह ने हक नहीं दिया उसको मारने का, वो नशूज की सूरत में दिया है। मेरी वालदा एक जुमला बोला करती थी कि हमारे लोगों के दरमियान में मियाँ बीवी के झगड़े किस वजह से होते हैं, ये आटा गूंथते हुए हिलती है, इस पर भी तलाकें हो जाती हैं। तो ये जड़पन है, जहालत है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये काना इन अल्लाह काना अलीमन हक, अच्छा दोनों बातें मैंने अर्ज कर दी कि जो आयत के शाको सबाक में बात ये बनेगी कि वो औरतें जो इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मामला ठीक नहीं हुआ, तो वो अब हकम आकर फैसला करेंगे कि गलती किसकी थी, शौहर की गलती है बीवी की गलती है। जिसकी गलती होगी उसको कोई सजा तजवीज़ करना चाहते हैं, कोई जुर्माना तजवीज़ करना चाहते हैं, या कोई पाबंदियाँ लगाकर सुलह कराने की कोशिश करेंगे। अगर सुलह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगला कायदा शुरू हो जाएगा। इन अल्लाह काना आलिमन खबीरा, बिलाशुबा अल्लाह ताला जानने वाले और ख़बरदार हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मियाँ और बीवी और दोनों हकम सोच समझ के फैसला करें कि कल खुदा के सामने हाजिर होना है, जो दिलों के हालात भी जानता है और जो कुछ सामने हो रहा है उससे भी बाखबर है। तो इसलिए ये मामला अपना जो है वो पूरी दयानतदारी से करें। यह ना हो कि अपने साथी यानी जो शौहर की तरफ से आया है तो वो मर्द की हमायत में हदूद से तजावुज़ करे, और जो बीवी की तरफ से आए वो अपनी बीवी की हमायत में हदूद से तजावुज़ करे। दोनों सोच समझ कर करें, क्योंकि अल्लाह का सामना करना है। तो इस आयत में अब अल्लाह ताला ने उस मुखालफत को जेरे बैस ले आए हैं जो जुदाई की तरफ जा सकती है, मुखालफत की शक्ल इख्तियार कर गई है, और अल्लाह ताला अब भी यही चाहते हैं कि इनके दरमियान इस्लाह हो जाए, ये घर टूटे नहीं। तो ये पूरी कोशिश इस बात की है, यानी आयत नंबर 34 में और आयत नंबर 35 में अल्लाह की कोशिश यही है कि जो शादी हो गई है वो कायम रहे, नशूज़ को कैसे संभालना है और फिर शिकाक को कैसे संभालना है। अगर नशूज़ से अगली स्टेज में बात चली गई है तो फिर कैसे करना है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि शिकाक में नशूज़ में क्या फ़र्क है। नशूज़ में सिर्फ सरकशी सी थोड़ी सी है, लेकिन वो शिकाक अभी नहीं हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है वो टूटने जा रहा है, उस तरफ बात अभी नहीं गई है। अगली आयत बहुत अहम है, ये जैसा सूरह अल बकरा में हमने देखा, सूरह आल इमरान में हमने देखा, यहाँ पर भी वैसे ही है कि मियाँ बीवी के मामला चल रहे थे तो बीच में आ गया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। कुरान मजीद के जो मजामीन है इनको अब कोई देखने वाला जो कुरान की बातों को नहीं समझता वो यही ख्याल करेगा, लो जी अभी तलाक और सुलह की बात हो रही थी तो अब अल्लाह ताला ने तौहीद की बात बयान कर दी है। ऐसा नहीं है, इस कलाम के अंदर पूरा रब्त है पिछली सारी बातों के साथ, वो मैं वाज़े करता हूँ, कोशिश करता हूँ। पहले तर्जमा ठीक कर लीजिए, वाबुदुल्लाह अल्लाह ही को खुदा मानो, वला तुशरिकु बिही शैया और उसके साथ किसी और को खुदाई में शरीक ना करो। मैं वाबुदुल्लाह का तर्जमा इबादत करना नहीं कर रहा, बंदगी करना नहीं कर रहा, ये मेरी तहकीकी राय है कि कुरान मजीद में पूरे में इबादत का लफ्ज़ खुदा मानने के मानी में इस्तेमाल होता है, कदीम अरबी में ये इसी मानी में आया है। तो अल्लाह ही को खुदा मानो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अब ये क्यों कहा है? देखिए, तमाम दीन की और तमाम अखलाक की बुनियाद खुदा है और उसमें भी तौहीद। तमाम दीन की बुनियाद इस तसव्वुर पर कायम है कि अल्लाह है, अगर अल्लाह नहीं है तो दीन नहीं है, अखलाक नहीं है। ये लिख कर रख लीजिए, दुनिया अगर हम पता नहीं यकीनन जीते नहीं रहेंगे क्योंकि अभी बड़ा फासला है, तो जो लोग बाद में आने वाले हैं वो देखेंगे कि अगर खुदा का इनकार कर दिया अक्सरियत ने, इस वक्त तो अक्सरियत खुदा को मानती है, अभी भी 70-80% लोग खुदा को मानते हैं दुनिया भर में, लेकिन जिस दिन इतने लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया तो दुनिया में अखलाक की जगह नहीं रहेगी, दीनदारी की जगह नहीं रहेगी। क्योंकि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं नेकी इख्तियार करूँ, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं मार धाड़ करके पैसा ना कमाऊँ, मैं रिश्वतें ना लूँ, मैं चोरी ना करूँ, मैं कोई ऐसे चोर रास्ते ना निकालूँ, क्या पड़ी है मुझे? ये सारा कुछ सिर्फ इस तसव्वुर पे खड़ा है कि अल्लाह ताला है, और अगर शिर्क इख्तियार कर लिया है तो फिर भी सब कुछ गारत हो जाता है। अच्छा चलो, मेरे खुदा तुम्हारे खुदा को राज़ी कर लेंगे, मैं इनको कुछ राज़ी करता हूँ, वो खुद ही बात कर लेंगे। तो जो अब हमारे सिर्फ अपने पाकिस्तान में उन लोगों को देखिए कि जो अपने बुज़ुर्गों की सिफारिश के कायल हैं, शफात के कायल हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो बाबा जी राज़ी कीता है। तो बाबा जी क्या करेंगे उनके ख्याल में कि कल अल्लाह ताला को राजी कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़ी उन्होंने नेकियां कर रखी हैं, तो वो क्या करेंगे कि अल्लाह को राजी कर लेंगे। अब मैंने जो करना था, मार धाड़ करनी थी, रिश्वत लेनी थी, मेरे पास जानने वाले ऐसे भी हैं कि वो सब कुछ करते हैं, यानी हर तरह का नाजायज़ हराम काम, कमाई में भी और ज़िंदगी गुजारने में भी, लेकिन वो हर महीने कुछ या हर हफ्ते पैसे लगाए हुए हैं, वो जाकर बाबा जी को दे आते हैं इस तवक्को पर कि बस कल बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये जो तसव्वुर है ये भी पूरे दीन का गलत कर देता है। तो इसलिए दोनों जुमले बोलने पड़ेंगे, अल्लाह को खुदा मानो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। दोनों गारत करे दीन है, अगर खुदा का इनकार कर दें कि कोई खुदा मौजूद नहीं है, और ये भी गारत करे दीन है कि आप एक से ज्यादा खुदाओं को मान लें। तो पूरे दीन की बुनियाद किस पर है? खुदा के होने पर और खुदा के एक होने पर। इसलिए सूरह फातिहा में देखिए कि तीन आयतें ऐसी जोड़ी हैं अल्लाह ताला ने कि उसमें कई पहलू निकलते रहते हैं। हम वो ज़ाहिर है कि इंसान हैं, खुदा के कलाम की जो बारीकियां हैं, परतें जो हैं उसको पकड़ नहीं पाते। उसमें एक परत ये है, मैं सिर्फ एक परत बयान कर रहा हूँ, मानी की परतों का मतलब लेयर्स कह लीजिए जो भी उसको। तो एक परत उसकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कल क़यामत वाले दिन वही फैसला करने वाला होगा, कल क़यामत वाले दिन वही फैसला करने वाला होगा। अगर वहाँ पे किसी इंसान को बिठा दिया जाए क़यामत वाले दिन फैसला करने के लिए, तो रिश्वतें चल जाएंगी, कई गलतफहमियाँ चल जाएंगी, कई बेइल्मियाँ काम आ जाएंगी, तो फिर अल्लाह काबिल शुक्र नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह है, और आगे जाके मालिक की यौमिद्दीन का रब्त है ये कि अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत वाले दिन उसी के कंट्रोल में सब कुछ होगा, सारे फैसले उसी ने करने, वो मालिक होगा उस दिन, किसी और के इख्तियार में कुछ नहीं होगा। तो ये मानी की परतें जो हैं ये बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी ये मानी की परत है कि शिर्क आते ही शरीयत बर्बाद हो जाती है, अखलाक बर्बाद हो जाता है, दीन कायम नहीं किया जा सकता। अब एक और परत देखिए इसकी, अल्लाह के अलावा दीन दे कौन सकता है? किसी का हक नहीं। तो पिछली सारी शरीयत जो बयान हुई अल बकरा में, आल इमरान में और अब निसा में, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मानोगे, मुझे मानोगे तो शरीयत पर चलो, मैं हक रखता हूं देने का, क्योंकि मैं अल्लाह हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं। और मैं ये बता चुका हूं अपनी पिछली नशिस्तों में कि अल्लाह ताला को अल्लाह होने का, इलाह होने का हक क्यों मिला है, मैं क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खालिक नहीं हूं। तो जिसने बनाया है वही मालिक है, वही इलाह है, उसी की बंदगी होगी, कानून भी उसी का चलेगा। तो खालिक ही का कानून चलेगा, खालिक ही की अलोहियत चलेगी, खालिक ही को हक है कि वो अपनी पूजा पाठ के लिए हमें कहे, खालिक ही का हक है कि वो हमें मौत दे, जिंदगी दे, ये उसी का हक है और किसी का हक नहीं है। तो ये आयत इस तरह से जुड़ी हुई है, यानी यूँ समझिए कि पीछे जितने कवानीन बयान हुए थे उनकी जड़ को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना मेरे ये कुछ इम्तिहान के लिहाज से नागवार हुक्म तुम्हें मानने में मुश्किल आएगी। मैंने शोहरों को कवाम बना दिया है, नागवार होगा औरतों के लिए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुझे रब मानते हुए इस बात को मान लो। तो ये वाबदुल्ला है, बहुत खूबसूरत तरीके पर अल्लाह ताला इस तरह की सूरह आल इमरान में और सूरह अल बकरा में इलाहुकुम इलाहुन वाहिद से यही मजमून बयान हुआ था। और अगर आप ज़रा तवज्जो दें तो इस सूरह का आगाज़, अच्छा वो शुरू से नहीं है, इस सूरह का आगाज़ भी इससे हुआ था, वत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलकक़ुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया। तो जहां से आगाज हुआ था वहीं दोबारा उसको अल्लाह ताला ले गए हैं। तो गोया ये पूरे दीन की बुनियाद, पूरे दीन की जड़, मेरे और आपके लिए तसल्ली का बायस। अब तीसरी परत देखिए, अल्लाह का कानून है, ये इमरान खान और नवाज शरीफ का कानून नहीं है, तो मेरे लिए फायदा ही फायदा होगा ना। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मशक्कत है, लेकिन ये बाबरकत होगा। तो ये भी इसके अंदर पहलू है। शरीयत के खुदा की तरफ से होने में ये भी एक पहलू होता है कि मिसाल के तौर पर एक हिंदू बेचारा बाज़ुकात 15-15 साल एक पांव पे खड़ा रहता है भगवान को राजी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं भगवान कैसे राजी होता है, पता ही नहीं उसको। जब खुदा दीन देता है तो मेरे और आपकी तसल्ली का बाइस बन जाता है कि हाँ बस इस पर अल्लाह राजी हो जाएगा। मैं 5 नमाजें पढ़ लूंगा दिन में तो एक जिम्मेदारी अदा, हाँ जी अदा। ये बहुत बड़ी तसल्ली है। तो वाबदुल्ला में ये पहलू भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब शरीयत के पहलू से मैंने बातें वाजे कर दी हैं, क्योंकि सियाक व सबाक शरीयत का चला रहा था। वाबदुल्ला के 1000 पहलू हैं, लेकिन यहाँ शरीयत के पहलू से मैंने उसको वाजे कर दिया। तो फरमाया कि वाबदुल्लाह, अल्लाह ही को खुदा मानो, और वला तुशरिकु बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये जो वाबदुल्लाह, खाली ये जुमला आता तो बात आती रहती है। इसको मिसाल के तौर पर हमारा कलमा जो है ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, ये नाकिस बात है, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो ये जो दूसरा जुमला होता है ये भी जरूरी होता है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला के लिए दो लफ्ज कुरान में बार बार आए हैं, सुभान और हम्द। हम नमाज कहाँ से शुरू करते हैं? सुभानकल्लाहुम्मा वाबे हम्देका, सुभानकल्लाहुम्मा वाबे हम्देका। इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह में कोई ऐब नहीं है। सुभान का मतलब होता है अल्लाह में कोई ऐब नहीं है। लेकिन अगर किसी में कोई ऐब नहीं है और खूबी भी ना हो तो क्या मतलब हुआ? दूसरी बात बतानी पड़ेगी कि हाँ उसमें खूबियाँ भी हैं, तो वो हम्द से बयान होता है। तो ऐसे ही अल्लाह ही को खुदा मानो में बात पहुंच रही है कि अल्लाह खुदा है, लेकिन वला तुशरिकु बिही शैया, और किसी को खुदा ना मानो, किसी और चीज़ को खुदा के साथ शरीक ना करो। तो दोनों बातें कहनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्लाह का इलाह होना साबित हो रहा है, और इसमें यह साबित हो रहा है कि और कोई नहीं है। तो ये दोनों बातें मिलकर एक ही बात को कह रहे हैं। अब इसमें आगे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं वह बिल वालिदैन एहसाना, इसकी रोशनी आप देखिए, मैंने पीछे से जोड़ा पहले, अब आगे से जुड़ेगा। देखिए जो जुमले होते हैं वो दोनों साइडों पे जुड़ते हैं, और बाज़ुकात सिर्फ एक साइड पे जुड़ते हैं लेकिन ज़्यादातर। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला के कहा कि अल्लाह ही को खुदा मानो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, तो इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ जो जो उसका सबसे बड़ा हक है वो यही है कि उसको खुदा माना जाए। और अगर किसी और को खुदा करार दे दी जाए तो ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि हम खुदा का हक किसी और को दे रहे हैं। तो अब ये शरीयत की बुनियाद है जो बता दी, और आगे भी शरीयत ही का हिस्सा बयान किया जा रहा है, लेकिन वो भी जुमला आप देखिएगा कि कहाँ रखा है अल्लाह ताला ने। बज़ाहिर अलग कर दीजिए तो पूरी बात मुकम्मल है कि भाई अल्लाह को खुदा मानो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। आगे मैं फहरिस्त पूरी कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। वालदैन, ज़िल क़ुरबा, यतामा, यतीम लोग, मसाकीन, बेकस लोग, वलजार, हमसाया, ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदार हमसाया, 5, वलजार अलजुनुब, अजनबी हमसाया, रिश्तेदार हमसाया, अजनबी हमसाया, व साहिब बिलजन। इस वक्त आप एक दूसरे के साथ जो हमसाए बने हुए हैं वो ये है, साथ में बैठा हुआ हम नशीन आदमी, 7, वबन सबील, मुसाफिर, ममा मलकत अयमानुकुम, वो इंसान जो मलकियत में है, 9 लोगों की फहरिस्त गिनवाई है। इन सब के साथ क्या करना है? एहसान। एहसान का क्या मतलब होता है? हम उर्दू में कहते हैं हुस्ने सलूक, लेकिन हुस्ने सलूक किसको कहते हैं? किसी के साथ नेकी करने को, अच्छा काम करना और बुराई ना करना। जैसे अल्लाह को खुदा मानो और उसके साथ शरीक ना ठहराओ, उस तरह एहसान के 2 हिस्से हैं कि नेकी करो, बुराई नहीं करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, बुरा सलूक ना करो। ये हुस्ने सलूक के मानी है। یا میں محدود رہ رہا ہوں، احسان بہت سارے معنی میں آیا ہے قرآن مجید میں، یا میں اس آیت کے لحاظ سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ اکٹھے کر دیے ہیں، یعنی اب مجھے بتائیے کوئی اور رہ گیا ہے، انسانوں کی قسم رہ گئی. مثال کے طور پر امریکہ میں کوئی آدمی تو میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس قریب آ جائے گا تو اس کیٹیگری میں آ جائے گا، ساتھ جو بھی ساتھ موجود ہے. تو میرے ارد گرد جتنے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ میں نے حسن سلوک کرنا ہے، وہ اجنبی ہے، جانا ہوا ہے، رشتہ دار ہے، کیسا ہے، بس وہ پاس بیٹھ کے آ گئے، بس میں بیٹھا ہے، کسی کام میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی کانفرنس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی سفر میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی دکان پر لائن لگی ہوئی ہے اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی اسٹور پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی جہاں بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ اصاحب الجن بن جائے گا. ان کے ساتھ بھی میں نے حسن سلوک کرنا ہے. تو دنیا کے تمام انسان شامل کر دیے، لیکن دو چیزوں پر میں توجہ زیادہ دینا چاہوں گا، والدین اور ذیل قربیٰ. ذیل قربیٰ میں قرآن مجید نے بیوی اور شوہر کو بھی شامل کیا ہے. پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی اس کو دیکھیے کہاں پہنچا دیا ہے، کہ دیکھو بیوی نشوز کرے تو یہ کرنا ہے، شکاکہ بینہما ہو جائے تو کیا کرنا ہے، لیکن اپنی پوری زندگی خدا کے بندوں سارے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس میں بیوی بھی شامل ہے، شوہر بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، چچا بھی شامل ہے، تایا بھی شامل ہے. پوری زندگی حسن سلوک پر تم نے گزارنی ہے، تو بیوی کے ساتھ تو اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ تمام جگہوں پہ آ جائے گی، یعنی وہ رشتہ داروں میں آ گئی اور آپ کے ساتھی کے طور پر بھی آ گئی جو آپ کے گھر میں رہتی ہے. تو اللہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. یعنی جو پیچھے خواتین کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس کو دیکھیے کہاں بنیاد میں جا کے جوڑ دیا ہے. میں ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں جو پیچھے بھی دیے ہیں، اور اب یہ دے رہا ہوں کہ ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو ذیل قربیٰ کی جو میں فہرست بنایا کرتا ہوں وہ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو مرکز میں رکھ لیجئے. میں، میرے والدین، والدین کے بہن بھائی، والدین کے والدین، یہ سارے کے سارے میرے قریبی رشتہ دار ہیں. میرے بہن بھائی، میرے بہن بھائیوں کے بچے، والدین کے بچے، میرے بہن بھائی. ٹھیک ہے، والدین، والدین کے والدین، والدین کے بہن بھائی، والدین کے بچے، میرے بہن بھائیوں کے بچے، والدین کے بچوں کے بچے، یوں کر لیجیے. تو مرکز میں میں ہوں لیکن والدین کے ساتھ سارا جڑا ہوا ہے. اب یہ والدین کون ہیں؟ ایک میاں بیوی. والدین کون ہے؟ ایک میاں بیوی. تو میں کے ساتھ بیوی بھی لگا لیجیے. بیوی کے والدین، بیوی کے بچے، وہ آپ کے بچے ہیں، بیوی کے بہن بھائی، تو یہ آپ کے سارے ذیل قربیٰ ہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک. یہ وہ دائرہ ہے جس میں آپ بدسلوکی نہیں کر سکتے. یہاں بدسلوکی کریں گے تو صلہ رحمی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. باقی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو صلہ رحمی تو نہیں ہوگی، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی جو یہاں حسن سلوک کا کہا جا رہا ہے. حسن سلوک کو میں دوبارہ بتا دوں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، برائی نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کو اب سمجھ لیجئے. باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تحت آ رہے ہیں. یتیم لوگ، یہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ النساء کے آغاز یتیموں سے ہوا تمہید کے بعد. مساکین جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے وہ طبقہ ہے جو بے بسی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے کام پورے نہیں کر سکتے، کمانے کا بھی کوئی مواقع کم ہوتے ہیں ان کے پاس، پڑھ نہیں سکے، لکھ نہیں سکے، بس بیچارے کما بھی نہیں سکتے، معذور ہیں، سب اس میں شامل ہو جائیں گے. ان کے ساتھ بھی یہ پہلے تین جو چار لوگ ہیں، یہ بہت ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک ہے، کیونکہ ترتیب بنی ہے فاصلے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو ان کے درجہ زیادہ بلند ہے یتیموں کا، رشتہ داروں کے فوراً بعد یتیم ہے. پھر اس کے بعد یہ غلاموں کا ذکر ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ غلامی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ حکم موقوف ہے جب تک کہ اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا ہو، کہ دوبارہ اگر غلام ہو جائیں تو پھر یہ حکم واپس آ جائے گا، ادروائز یہ موقوف ہے. بہت سارے حکم موقوف ہوتے رہتے ہیں، بحال ہوتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو پوری فہرست ہے وہ میں نے بتا دی، اصل چیز حسن سلوک ہے. والدین کا کیس جو ہے وہ ان سب سے ڈفرینٹ ہے. والدین کا ذکر ماں باپ کے باقی لوگوں سے پہلے اور خدا کے بعد ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہوا ہے سب والدین کا ذکر خدا کے بعد باقی لوگوں سے پہلے ہوتا ہے، اور کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمیشہ اسی طرح سے ہوا ہے. اب والدین کے ساتھ جو اگر سورہ النحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں اور ایتائے ذی القربیٰ کا حکم دیتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے تو پہلا حکم کیا ہے؟ عدل کا. مثلا آپ نے مجھے مکہ مارا تو میں مکہ مار سکتا ہوں، آپ نے مجھے گالی دی تو میں جواب میں بدلہ لیتے ہوئے وہی گالی دے سکتا ہوں، یہ عدل ہوگا. احسان کیا ہوگا؟ کہ آپ نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کیا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ کوئی بات نہیں، غصہ چڑھ گیا ہوگا، کوئی غلطی کر لی ہوگی، کچھ مسئلہ ہو گیا ہو. لیکن یہ تو آپ کے ساتھ تو دونوں چیزیں جائز ہیں، عدل کا ثواب نہیں ہوگا، صرف اس کا ہوگا کہ میں غصے میں بھی قابو رکھا اور عدل کے مطابق بدلہ لیا، اتنا ثواب ہوگا عدل کرنے کا، لیکن اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا، وہ میں نے بدلہ لے لیا ہے. لیکن اگر میں معاف کر دوں اور حسن سلوک بھی کروں، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کیا، چائے پانی پوچھا یا سلام کر کے محبت کے ساتھ چلا گیا، اب احسان میں نے کر دیا تو احسان کا ثواب ہوگا. والدین کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا میرے معاملے میں، آپ کا اپنے والدین کے آپ کے معاملے میں. مثلا مجھے میرے والد ڈانٹیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجھے گالی دیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجھے تھپڑ لگائیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، یہ والدین کا حکم ہی احسان سے شروع ہوتا ہے، ہر صورت میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، سوائے اس کے کہ کیس کسی اور کا. میرے والد صاحب نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب میں احسان نہیں کروں، گواہی دینی ہوگی گواہی دوں گا، آپ کو آپ کی زمینیں آپ کے حوالے کرنی ہے تو کرواؤں گا. اب یہاں پر والد صاحب کے ساتھ احسان نہیں ہے، یہاں پر مجھے عدل کے مطابق چلنا ہے، لیکن اپنے کیس میں مجھے عدل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بالوالدین احسانہ. اب یہ اللہ کے بعد کیوں آتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، کہ اللہ کیوں ہمارے مالک ہوئے؟ خالق ہونے کی وجہ سے، میں نے ابھی عرض کیا. اور والدین ہمارے والدین کیوں ہوئے ہیں؟ ولادت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. صرف والدین وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا یہ تقدس والا رشتہ بنتا ہے کہ وہ میری ولادت میں خدا کے اعلی کار بنے ہیں، خدا نے ان کو ذریعہ بنایا ہے میری تخلیق کے لیے، اس وجہ سے ان کو پہلا مقام مل جاتا ہے. باقی لوگوں کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہے میرا، نہ چچا کے ساتھ، نہ تایا کے ساتھ، نہ پھوپھی کے ساتھ، وہ میں احترام کرتا ہوں والدین کی وجہ سے. اس لیے میں نے اپنے بات جو مرکز میں رکھا وہ والدین کو رکھا، انہوں نے مجھے وہ وجود دیا ہے جو خدا کی تخلیق کا ایک پروسیس تھا، اس میں وہ. تو والدین میرے لیے مرکز بنتے ہیں، میں ان کے لحاظ سے سوچتا ہوں. والدین کے والدین یعنی دادا دادی، نانا نانی، والدین کے بہن بھائی یعنی چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں، اور والدین کے بچے یعنی میرے بہن بھائی، اور والدین کے بچوں کے بچے یعنی میرے بھتیجے بھانجے، یہ والدین کے گرد گھوم رہی ساری چیز. تو مرکز میں میں ہوں اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن والدین کے گرد گھوم رہا ہے. تو ذی القربیٰ یہ سارے جو ہیں یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے اب اوپر چلے جائیے حضرت آدم کے زمانے میں، تو حضرت آدم بھی کیا کر رہے تھے، یہ باقی سارے لوگ ان کے حوالے سے ہمارے رشتہ دار بنے ہیں، تو وہاں بھی والدین ہیں. تو ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میرے ریموٹ کزن بن گئے ہیں، دور کے رشتہ دار بن گئے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑ گیا ہے. اور ایک اور ریموٹ ریلیشن خدا کے ساتھ بنتا ہے کہ یہ سارے کے سارے خدا کی مخلوق ہیں، جو سورہ النساء کے آغاز میں بتا چکا ہوں. تمام انسان آدم علیہ السلام کے حوالے سے میرے رشتہ دار ہیں، تمام انسان خدا کی مخلوق ہونے کی وجہ سے خالق کی مخلوق ہونے کی وجہ سے میرے رشتہ دار ہیں. ان دو رشتوں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا. تو اس لیے اب ایک پرت اور واضح ہو گئی آپ پر کہ وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا کے بعد والدین اور اتنے لوگوں کا ذکر کیوں ہوا ہے. تو وہ میرا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے آپ سب لوگ میرے خالق بھائی ہیں, خدا بھائی ہیں, جیسے پیر بھائی ہوتا ہے کہ آپ سب کو خدا نے پیدا کیا, مجھے بھی پیدا کیا. تو میں اور آپ خدا کے کنبے کے, خدا کی مخلوق کے کنبے کے افراد ہیں. اور دوسرا پہلو کیا ہے, یہ سارے کے سارے وہ نفس واحدہ جو سورہ کے شروع میں تھا اس کی اولاد ہیں. تو وہ میرے کزن ہیں, آپ میرے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھائی ہیں, کوئی بہن ہے کوئی. تو یہ جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یہاں روک لیتے ہیں, اس آیت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ.